ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 87 वर्षों से समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य कर रही है और प्रारंभ से ही हमारी सेवा के मुख्य दो साधन रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत वो सनातन सत्यों का ज्ञान दिया जाता है जिन सनातन सत्यों पर हमारा जीवन चलता है और ये संसार का खेल चलता है। आत्मा परमात्मा कर्म कर्म फल सुख दुख पुरुषार्थ प्रारब्ध स्वर्ग नरक आलोक परलोक जीवन से जुड़े हुए इन मूल सत्यों का ज्ञान स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को देते हैं। इसलिए हर सत्र में ज्ञान दिया जाता है, फिर योग अभ्यास भी कराया जाता है। राजयोग वो विधि है, वो पद्धति है जिससे हम अपने आप को उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ सकते हैं, अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। यहां राजयोग सिर्फ क्रिया नहीं है जो हम सीख ले और घंटा आधा घंटा करते रहे। राजयोग जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। यहां एक दो घंटे के योगी बनने की बात नहीं है, यहां योगी जीवन बनाने की बात है। इस राजयोग का आधार कोई क्रिया नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई मनुष्य गुरु नहीं है, कोई शास्त्र इसका आधार नहीं है। इस राजयोग का आधार सहज ईश्वरीय ज्ञान है। इसलिए जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, अभ्यास में लाते जाएंगे, ऐसे ऐसे योग परमात्मा से लगता जाएगा। योग शब्द का अर्थ है मिलन, वियोग माना अलग हो जाना, सेपरेशन, योग माना मिलन मनाना, कनेक्शन जोड़ना, रिलेशन स्थापित करना। इसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। वैसे तो हरेक का बुद्धि योग कहीं न कहीं जुड़ा हुआ ही है। हरेक के मन बुद्धि देह में, देह संबंधों में, वैभव में, पदार्थों में, प्रवृत्ति में, व्यसनों में, बातों में, कहीं न कहीं हरेक का बुद्धि योग अटैच है ही, उसको योगी नहीं कहते हैं। अपने मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना, उसे योग कहते हैं। इसलिए योग अभ्यास हम कर सकें उसके लिए मूल तीन बातों का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। पहला है योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं कौन है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, पहचानना, तभी सेल्फ रियलाइजेशन हम कर सकते हैं। पहले तो खुद का सही परिचय हो। दूसरा है वो परम शक्ति परमात्मा कौन है जिससे हमें योग लगाना है। तीसरा है राजयोग की विधि क्या है, अभ्यास किस विधि करना है। तो आज के प्रथम राजयोग सत्र में हम स्वयं का सही परिचय प्राप्त करेंगे। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और अंत वापिस आखिर हमें कहां जाना है। हर धर्म में इस बात का महत्व दिया जाता है कि नो थाई सेल्फ, खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। कविवर रविंद्रनाथ जी ने भी एक काव्य में कहा है, अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्जवल करो। वो हमारा आंतरिक स्वरूप कौन सा है? हम अपने बाह्य शारीरिक स्वरूप को जानते हैं, आपस में मिलते हैं, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना शारीरिक सांसारिक परिचय ही एक दो को बताते हैं। स्पष्ट है हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए आप कौन हैं इस प्रश्न के उत्तर में अपना शारीरिक परिचय ही हम एक दो को बताते हैं। सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सो जाते हैं तब तक हर कर्म में अपनी स्मृति को चेक करें। कुछ एक कर्मों में शरीर के नाम रूप रंग आयु की कॉन्शियसनेस हमें रहती है। मैं मिस्टर फलाना हूं, मैं युवा हूं, बूढ़ा हूं, सुंदर हूं, साधारण हूं, काला हूं, गोरा हूं, शरीर के नाम रूप रंग आयु की कॉन्शियसनेस में। कुछ एक कर्म व्यवहार में आप देखिए देह संबंध के अभिमान में हम व्यवहार करते हैं। मैं इनका पति हूं, पता है मैं किसका बेटा हूं, मैं इनकी सास हूं, संबंध के अभिमान में आकर हम व्यवहार करते हैं। हमें अपने प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस रहती है, इसलिए हम अपने आप को अपने प्रोफेशन से ही आइडेंटिफाई करते हैं। मैं ऑफिसर हूं, मिनिस्टर हूं, उद्योगपति हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं। हम अपने प्रोफेशन से ही अपना परिचय देते हैं, इसलिए हमारी पर्सनालिटी भी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ह्यूमन डूइंग बनती जा रही है। हमारे रिलेशंस भी कोई क्या करता है, किस पोस्ट पोजीशन पर है, उसी आधार पर चलते हैं। और ये कॉन्शियसनेस इतनी बनी रहती है कि इवन रिटायर्ड हो जाने के बाद भी हम कहते हैं मैं एक्स चीफ इंजीनियर हूं, मैं एक्स मिनिस्टर हूं, मैं एक्स एमएलए हूं। इस प्रकार देह धर्म की भी कॉन्शियसनेस रहती, मैं क्रिश्चियन हूं, मुस्लिम हूं, हिंदू हूं, पारसी हूं, इस धर्म की कॉन्शियसनेस के कारण भी कितने डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं। इस प्रकार जाति की कॉन्शियसनेस रहती, हम तो ब्राह्मीन हैं, ये बनिया है, मैं तो राजपूत हूं, जाति और ज्ञाति की कॉन्शियसनेस रहती है। इवन भाषा की कॉन्शियसनेस, मैं मराठी हूं, गुजराती हूं, पंजाबी हूं, बंगाली हूं, तमिल हूं, तेलुगु हूं, भाषा की कॉन्शियसनेस, नेशनलिटी की कॉन्शियसनेस, मैं अमेरिकन हूं, जैपनीज हूं, चाइनीज हूं। हम कह सकते हैं हमारा जीवन टोटल बॉडी कॉन्शियस बन गया है, सांसारिक बन गया है। प्रैक्टिकली भी हमारा मैक्सिमम समय, मनी, एनर्जी देह के प्रति, देह संबंधों के प्रति, दैहिक प्रवृत्तियों के पीछे ही खर्च हो। हमारा जीवन भोगवादी, भौतिकवादी बन चुका है। जीवन के ऐसे स्वरूप में हमें आवश्यकता है कुछ क्षण हम शांति से बैठें और सोचें कि हम अपने आप को देह समझ रहे हैं, देह भान में जीवन जी रहे हैं, देह अभिमान में आकर कर्म कर रहे हैं। क्या हम शरीर हैं? क्या हम शरीर हैं? आप कौन हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना दैहिक दुनियावी परिचय देते हैं, मीन्स हम अपने को देह समझ रहे हैं, परंतु क्या हम शरीर हैं? विवेक से सोचेंगे, समझ में आएगा कि शरीर वास्तव में क्या है। शरीर तो हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि शरीर तो प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ है। प्रकृति के पंच महाभूत हैं पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि। शरीर इन्हीं पांच तत्वों से बना है, इसलिए जब डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं हम कहते हैं पांच तत्वों का बना मानव शरीर पुनः पांच तत्व में मिल गया। आम भाषा में हम कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया। तो देखिए शरीर तत्वों से बना है, मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी केवल मटीरियल है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, साधन हैं, वैभव है, पदार्थ है, इन आँखों से जो कुछ आप देख रहे हैं वो प्रकृति के पांच तत्वों से बना है। जैसे ये चीजें जड़ हैं, शरीर भी पांच तत्वों से बना हुआ जड़ है, नॉन लिविंग है। लेकिन मनुष्यात्मा, जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द जब हम कहते हैं तो दो अस्तित्व सिद्ध होते हैं, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। मानव शरीर प्लस आत्मा मिलाकर मनुष्य आत्मा कहा जाता है। अब मानव शरीर के बारे में आप देखिए कि शरीर स्थूल है, तत्वों से बना है, इन आँखों से दिखाई देता है। शरीर के बारे में हम जानते हैं कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है और आखिरकार नाशवंत है। शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति है जो अति सूक्ष्म है, जिनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब कोई शरीर छोड़ देता है, हम कहते हैं लाइट हैज गॉन, ज्योति बुझ गई, दीवा बुझ गया। क्या चला गया, कैसा चला गया दिखाई नहीं देता है, पर समझ में आता है, महसूस होता है कोई चैतन्यता चली गई। जब तक वो चैतन्य शक्ति है, हम कर्म करते हैं, अनुभव करते हैं। अभी अगर अंगुली कट जाए, दर्द महसूस होता है, जल जाए, कट जाए, अनुभव होता है। उस चैतन्य शक्ति के निकल जाने के बाद फिर इस शरीर को जला देते हैं, दफना देते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, कोई अनुभव नहीं होता है। जब तक चैतन्य शक्ति है, हमारे एक दो से संबंध है, व्यवहार है, लेन देन है। उस चैतन्य शक्ति के निकल जाने के बाद हम तुरंत कहने लगते हैं कि अब सबको जल्दी समाचार दो, जल्दी तैयारी करो, डेड बॉडी जल्दी निकालो, जल्दी ले जाओ। हमारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। उस चैतन्य शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है, जिसको हम सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, साइकोलॉजी में जिसको हम साइकी कहते हैं, मेडिकल साइंस जिसको स्पिरिचुअल एनर्जी, कॉन्शियंट एनर्जी कहते हैं। सरल शब्द में हम उसे आत्मा कहते हैं। तो देखिए, मनुष्य आत्मा कहने से दो अस्तित्व सिद्ध हुए, एक मानव शरीर, दूसरी इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा। प्रश्न आप सबसे ये है कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं? अब आप विवेक से बताइए, क्या हम पांच तत्व के बने जड़ शरीर हैं, या इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है? क्या उत्तर मन में आ रहा है? हम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर जड़ है, नॉन लिविंग है। हम शरीर नहीं है। देखिए, देखने में शरीर आ रहा है, जैसे देखने में बल्ब आता है कि बल्ब प्रकाश दे रहा है, ट्यूब लाइट दे रही है, पंखा घूम रहा है, लैपटॉप चल रहा, देखने में चीजें आ रही हैं, लेकिन सही बात क्या है? इलेक्ट्रिक पावर बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में, ट्यूब के द्वारा लाइट के रूप में अनुभव होता है। इलेक्ट्रिक पावर माइक को चला रहा है, लैपटॉप को चला रहा है। इलेक्ट्रिक पावर नहीं दिखाई देता है, देखने में ये चीजें आ रही है। इस प्रकार देखने में शरीर आ रहा है, परंतु मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं सोचती हूं, विचार करती हूं। ये सोचना, विचार करना चैतन्यता की निशानी है। जड़ चीजें सोच नहीं सकती हैं। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, हमें इच्छाएं होती हैं, स्मृति रहती है। ये चैतन्य से कनेक्टेड है, न कि शरीर से। कोई सुंदर स्थान देखकर आप आते हैं, आप वापस घर आ गए हैं, आंखों के सामने वो सुंदर स्थान नहीं है, पर देखी हुई सुंदरता फिर याद आती है। ये चैतन्य को स्मृति रहती है। कोई स्वादिष्ट चीज खाते हैं, वो चीज खाकर पूरी कर दी है, परंतु लिया हुआ स्वाद फिर पाने की इच्छा होती है। वो चैतन्य को होती है, न कि जड़ शरीर को होती है। हम कर्म करते हैं, जड़ चीजें स्वयं क्रियाशील नहीं होती है। हम उनको धक्का मारते हैं, आउटर फोर्स देते हैं तो वो चलती है, खिसकती। हम स्वयं कर्म करते हैं, हमें अनुभव होता है। आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, कोई भी एप्रिशिएट नहीं करते हैं, फिर भी आपको खुशी होती है, आत्म संतुष्टि होती। कोई गलत कार्य आप करते हैं, किसी को भी पता नहीं है, फिर भी कॉन्शियस बाइट करता है, दिल खाता है, भय लगता है, चिंता होती है, अनुभव होता है ना। हमें इवन दूसरों के प्रति भी सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है, किसी के दुख को, कष्ट को, मुसीबत को जानते हैं। अगर हमें जरा भी हमदर्दी नहीं होती है, सहानुभूति नहीं होती है, हमें जरा भी दया रहम नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर है, कठोर दिल है, जरा भी इनको सहानुभूति नहीं आती। तो देखिए, दया, रहम, प्यार, सहयोग, हमदर्दी, सहानुभूति, ये चैतन्यता के लक्षण है। सिद्ध है हम चैतन्य शक्ति है, हम एक आत्मा है। आध्यात्मिक ज्ञान का स्वयं के बारे में यही प्रथम सत्य हमें समझना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन रखने वाले हम स्वयं के ही सत्य स्वरूप को नहीं जानते हैं। भल सुनने में ये बात आपको साधारण लग रही होगी, जब कोई शरीर छोड़ते हैं, हम श्रद्धांजलि देने जाते हैं, किन शब्दों में श्रद्धांजलि देते हैं, किन शब्दों में, हाँ क्या बोलते हैं? उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा की सदगति हो, यही श्रद्धांजलि संदेश अखबारों में भी छपाते हैं ना। अब देखिए, शरीर छोड़कर जाने वाली गई कौन? चैतन्य शक्ति ना। शरीर तो यहीं पड़ा है। शरीर छोड़कर जाने वाली आत्मा के लिए हम कहते हैं उस आत्मा को शांति मिले। क्या जीते जी शरीर में रहते हुए हम खुद को आत्मा समझते हैं? समझते हैं? नहीं। जीवन भर हम खुद को देह ही समझते रहते, जबकि सत्य ये है कि हम आत्मा है। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम इन आंखों से खुद को देख नहीं सकते हैं, इसलिए जो दिखाई दे रहा है शरीर को ही हम स्वयं समझ रहे हैं। इसलिए भल ये सुनी हुई जानी हुई साधारण बात लग रही हो, लेकिन ये मूल और मुख्य बात है कि हम इस भौतिक शरीर से, तत्वों के बने देह से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। हम कह सकते हैं मस्तक ब्रेन बॉडी का मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है। आत्मा चूंकि बॉडी की कंट्रोलर है, इसलिए मस्तक में स्थित होकर देह को चलाती है। इसलिए आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। शरीर केवल तत्वों से बना एक साधन है, जिस द्वारा मैं चैतन्य शक्ति आत्मा कर्म करती हूँ। हम इन आँखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, परंतु सुनने वाली देखने वाली बोलने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा मैं आंख से अलग हूँ, कानों से अलग हूँ, मुख से अलग हूँ। इस एक मूल सत्य को भूल जाने के कारण हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, मटीरियलिस्टिक बन गए हैं। इस एक सत्य को भूल जाने के कारण कितने डिफरेंसेस, कितने भेदभाव समाज में बढ़ गए हैं। शरीर को देख कर ही तो कहते हैं ना, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बेटा है, ये बेटी है। कितने भेदभाव रखे जाते हैं, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस लेवल से ही एक दो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जबकि सत्य ये है कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं ये गलत कॉन्शियसनेस है, मैं पुरुष हूं ये गलत कॉन्शियसनेस। इस रॉन्ग कॉन्शियसनेस के कारण ही देखो कितने भेदभाव है, काले और गोरे के कितने भेदभाव, इतिहास भरा पड़ा है। हम भारतवासी भी अनुभवी हैं कि हमारे साथ इस देह भान के कारण ही कितना अन्याय, पक्षपात किया गया। ये हिंदू है, मुस्लिम है, देह धर्म अलग अलग है, जिसके कारण कितने लड़ाई झगड़े हैं। ये हल्की जाति के, ये ऊंची जाति के, ये जाति ज्ञाति के भेदभाव, अस्पृश्यता का कितना बड़ा कलंक सनातन धर्म को लगा हुआ है। भाषा के ऊपर कितने लड़ाई झगड़े हैं, जहां भी हमारे अलग अलग राज्य हैं, बॉर्डर एरिया में आप देखो भाषा भेद के कारण कितने झगड़े। हम कह सकते हैं इस गलत कॉन्शियसनेस के कारण जो बॉडी कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ है, जिसके कारण पूरा विश्व विभाजित हो गया। अगर हमें फिर से भाईचारा लाना है या सद्भावना समाज में लानी है, वो कभी भी बॉडी कॉन्शियस लेवल पर नहीं आ सकती, वो केवल सोल कॉन्शियस लेवल पर ही आ सकती। इसलिए चित्र में देखिए बताया है कि अब हमें फिर अपनी रॉन्ग कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। उठते बैठते चलते फिरते हर कर्म करते सोल कॉन्शियस बनकर कर्म करना है। हमें स्पष्ट रहे शरीर एक मोटर कार के समान है, मैं आत्मा ड्राइवर के समान हूं। एक ड्राइवर दिन रात गाड़ी चलाता है, वो अपने आप को मोटर नहीं समझता है, उनको क्लैरिटी है मोटर अलग है, मैं ड्राइवर मोटर से अलग हूं। इस प्रकार हमें भी ये सत्य रियलाइज करना है कि हर क्षण शरीर द्वारा मैं कर्म करती हूं, परंतु मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस देह रूपी कार से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा। शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूं। मेरा मकान है, मैं मकान नहीं हूं। मेरे वस्त्र है, मेरी साड़ी, मेरा शर्ट, मेरा पैंट। मैं साड़ी, मैं शर्ट, मैं पैंट नहीं कहते हैं ना। इस प्रकार शरीर एक वस्त्र है, मैं आत्मा इसको धारण करने वाली इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर हूं। मैं एक्टर हूं, मैं बॉडी ड्रेस नहीं हूं। मैं जो दिन भर वैरायटी रोल्स प्ले करती हूं, मैं ये रोल्स नहीं हूं। मैं आत्मा एक्टर हूं। शरीर एक रथ के समान है, मैं आत्मा रथी हूं। आत्मा निकल जाने के बाद इसलिए डेड बॉडी को अर्थी कहते हैं। फलाने की अर्थी उठी, अर्थी मीन्स जिसमें रथी आत्मा नहीं है, उस डेड बॉडी को अर्थी कहते हैं। शरीर एक पिंजर के समान है, आत्मा को पंछी कहा जाता है। इसलिए हम गहराई से खुद को रियलाइज करें, बार बार महसूस करें, मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा मस्तक। मैं हाथ, मैं पांव, मैं मस्तक नहीं कहते हैं ना, मीन्स मैं शरीर नहीं हूं। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है, हम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास है खुद को आत्मा जानना, मानना, महसूस करना और उस अनुसार चलना। आत्मचिंतन राजयोग का पहला अभ्यास। अब हम समझेंगे कि जैसे शरीर माना पांच कर्मेंद्रिया, हाथ पांव, आंख, नाक, कान, मुख मिलाकर शरीर कहा जाता है ना, पांच कर्मेंद्रियों के सेटअप को शरीर कहा जाता है। आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार को आत्मा कहा जाता है। मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा की चैतन्यता को ही मन और बुद्धि कहा जाता है। इसलिए मन, बुद्धि, संस्कार के चैतन्य समूह को ही आत्मा कहा जाता है। अब मन शब्द से आप सभी परिचित हैं, अक्सर बरसों से भक्ति करने वाले भी कहते हैं मन भटक जाता है। हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं, मन एकाग्र नहीं होता है, मन भटक जाता है। अब बताइए मन भटकता है मीन्स क्या होता है? मन भटकता है मीन्स क्या होता है? क्या मन कोई चीज है जो शरीर से निकल भटक जाती है? नहीं, मन कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, आत्मा की संकल्प शक्ति को मन कहते हैं, आत्मा की विचार शक्ति मनन शक्ति को मन कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना, विचार करना, कल्पना करना, आइडियाज निकालना, योजना बनाना, ये मन का कार्य है। इसलिए इस अनमोल विचार शक्ति का हमें सही उपयोग करना है। एक मिनट में आत्मा अनेक विचार कर लेती है। सबको अनुभव है जब हम टेंशन में होते हैं, भय में होते हैं, चिंता में होते हैं, विचारों की स्पीड फास्ट हो जाती है। आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। मन का कार्य ही है सोचना, इसलिए विचार ही ना आवे ये नहीं हो सकता। हम मन को विचार शून्य नहीं बना सकते। हाँ, हम मन को नकारात्मक चिंतन से सकारात्मक चिंतन में बदल सकते हैं। हम अनावश्यक व्यर्थ तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते हैं, हम व्यर्थ चिंतन को बदल कर आवश्यक चिंतन में बदल सकते। इसलिए राजयोग में हम मन को मारते नहीं हैं, सुधारते हैं, समझाते हैं। अक्सर कहते हैं ना, हम तो मन मार के जीते रहते हैं। हमें मन को मारना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, हमें मन को समझाना है, सुधारना है। हमें हठ क्रियाओं से मन का दमन नहीं करना है, हमें मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर मन को सुमन श्रेष्ठ मन बनाना। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। मन का कार्य है सोचना। अब हरेक अपने आप को देखिए, इस अनमोल विचार शक्ति को किस चिंतन में हमने लगाया है? अक्सर कौन सी बातें सोचते रहते हैं, कौन से विचार आते रहते हैं? देखो, हमने अपनी इस अनमोल विचार शक्ति मन को शरीर चिंतन, पर चिंतन, संसार चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में ही अधिकतर लगाया हुआ है। इसलिए देखिए वही विचार हमें आते रहते हैं, आपस में मिलते हैं घंटों, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। उसमें समय की कोई सीमा नहीं रहती। कहेंगे अरे बातें करते 2 घंटे बीत गए, पता भी नहीं चला। रात के 12 बज गए, पता भी नहीं चला। पर चिंतन, शरीर चिंतन, समाज चिंतन, संसार चिंतन, व्यर्थ चिंतन करने में समय की सीमा नहीं रहती। उसमें किसी को नींद नहीं आती। देर रात तक हम तेरी मेरी करते रहते हैं और यहां हम 10 मिनट भी आत्मचिंतन में बिठाते हैं, लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती है। परमात्म चिंतन का अभ्यास कराते हैं, कहते हैं मन नहीं लगता। ये क्या बताता है? हमें दूसरों में रस है, इसलिए पर चिंतन घंटों तक कर पाते हैं। हमें स्व में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आत्मचिंतन करने बैठते हैं, मन सोच ही नहीं पाता है, मन शून्य हो जाता है, नींद आने लगती है। परमात्मा में मन नहीं लगता है। भौतिक बातों में मन लगता है, फिल्में देखने में मन लगता है, पैसे गिनने में मन लगता है, शरीर को सजने संवारने में मन लगता है। आत्मचिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में मन नहीं लगता है, तो ये क्या बताता है? हम कितना व्यर्थ में चले गए। इसलिए राजयोग में हम सिखाते हैं कि अब अपने मन को आत्मचिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में लगाओ। अब 1 मिनट भी साइलेंस में बैठेंगे, मन में अनेक विचार आते हैं, पर सभी विचार उसी क्षण कर्म में नहीं आते हैं। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आत्मा की निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। मन अनेक संकल्प उत्पन्न करता है। बुद्धि मन के विचारों को अंडरस्टैंड करती है, सिलेक्ट करती है, निर्णय करती है, फिर कर्म करते हैं। इसलिए कहते हैं मन घोड़े के समान चंचल है, बुद्धि उसकी लगाम है। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। पर आज हमारी बुद्धि भी पतित भ्रष्ट बन गई है, बुद्धि भी कमजोर बन गई है। इसलिए यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, मन चलित होता रहता है, क्योंकि बुद्धि का कंट्रोल नहीं है, बुद्धि कमजोर है, अपवित्र बन गई है। इसलिए राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस निर्णय अनुसार चल नहीं पाते। अगर बुद्धि को शुद्ध बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, दिव्य बनाना चाहते हैं, हमें बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है, यहां कोई आसन प्राणायाम की बात नहीं, ये फिजिकल योग नहीं है, ये आत्मा को पावन शक्तिशाली दिव्य बनाने वाला सहज योग है। बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं, बार 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 उसी समझ वृत्ति से कर्म करते रहने से कर्म का प्रभाव दृढ़ बन जाता है, जिसको स्वभाव संस्कार कहते हैं। कर्म ही संस्कार बनते हैं, जिसको हम हैबिट्स कहते हैं, संस्कार कहते हैं, सब कॉन्शियस कहते। कर्म ही संस्कार के रूप में आत्मा में संचित होता है, रिकॉर्ड होता है। हम कह सकते हैं विचार कर्म का बीज है। पहले मन में बात आती है, फिर कर्मेंद्रियों से अभिव्यक्त होती है, कर्म बनती है। विचार कर्म का बीज है, कर्म ही संस्कार बनते हैं। एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार, चालीस बार गुस्सा करते रहेंगे, आपका स्वभाव क्रोधी बन जाएगा। फिर अनावश्यक छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा करते रहे, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया, कह देते हैं मेरा स्वभाव ही क्रोधी है, मैं कहता हूं ना मुझे गुस्सा आ जाता है। अगर आप यही सोचेंगे, यही कहेंगे, तो गुस्सा ही करते रहेंगे। विचार ही कर्म में आते हैं, कर्म ही संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार उनके वशीभूत होकर ऐसे ही कर्म फिर करते रहे। संस्कार आपको बाध्य करेगा, दो बार, दस बार, बीस बार झूठ बोलते हैं, आपका स्वभाव झूठ बोलने का हो जाएगा। फिर बिन जरूरी छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते रहे। इसलिए कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों की चोरी करते करते व्यक्ति पक्का चोर बन जाता है, कर्म ही संस्कार बन जाता है। अब हम हरेक अपने आप को देखें, हमारे संस्कार कैसे हैं। दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी रिमार्क्स देते हैं, फलाना बहुत झूठा है, क्रोधी है, अभिमानी है। दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी रिमार्क्स देते हैं, पर खुद को देखो। खुद को देखना है, मेरे स्वभाव संस्कार कैसे। हम सभी आत्माएं कम ज्यादा मात्रा में, हम सभी के संस्कार विकृत बन गए हैं। कोई काम वासना के वश है, कोई क्रोध के वश है, कोई लोभ के वश है, कोई अभिमान के वश है, ईर्ष्या द्वेष के वश है। हम सभी आत्माओं के संस्कार विकृत बन गए हैं। हम सभी आत्माएं पतित भ्रष्ट बन गई हैं, कामी क्रोधी अभिमानी बन गए। इसलिए अगर अपने संस्कारों को सुधारना चाहते हैं, हमें अपने कर्म व्यवहार को सुधारना चाहिए। अपने कर्म में अपने को कंट्रोल करो, हमें अपनी बिहेवियर को बदलना चाहिए। अगर हम अपने कर्म व्यवहार को सुधारना चाहते हैं, हमें चिंतन को सुधारना चाहिए, चिंतन को बदलना चाहिए। तो हम अपने कर्म को बदल सकते हैं। राजयोग में इसलिए हम चिंतन को बदलते हैं, और ये भी हम सब जानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो इस दुनिया का कुछ भी साथ नहीं ले जा सकती। इस दुनिया से जो कुछ हमने कमाया, इकट्ठा किया, वो यहां ही छोड़कर आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती। आत्मा क्या साथ लेकर जाती है, क्या साथ लेकर जाती है? किए हुए कर्मों से बने हुए संस्कार आत्मा साथ ले जाती। कोई भौतिक चीज नहीं ले जाती। जीवन भर जिस प्रकार के कर्म किए, उससे जो संस्कार बने वो आत्मा के साथ जाते। जैसे संस्कार, ऐसी आत्मा की गति होती है, ऐसा ही पुनः नई जीवन स्थिति हमें प्राप्त होती है। क्यों कोई आत्मा सुखी परिवार में जन्म लेती है, कोई क्यों आत्मा दुखी परिवार में जन्म लेती? क्यों कोई आत्मा संस्कारी परिवार में जन्म लेती है, कोई क्यों चरित्रहीन परिवार में पैदा? ये आत्मा संस्कार अनुसार जीवन स्थिति प्राप्त कर। इसलिए भल आज हम सभी आत्माएं कम या ज्यादा मात्रा में पतित, भ्रष्ट, दुखी, अशांत, तमो प्रधान बन गए हैं, फिर भी एक और सत्य हमें समझना है कि हर आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज में शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। यही कारण है हमें अभी भी स्वच्छता अच्छी लगती है, गंदगी नहीं। हमें पवित्रता अच्छी लगती है, विषय वासना नहीं। कितना भी व्यक्ति खुद पतित भ्रष्ट बन गया हो, वो दूसरों में सत्यता पवित्रता देखना चाहते हैं। हमारे साथ व्यवहार कोई करें तो सच्चाई से करें, ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी ओरिजिनल नेचर सत्यता है, पवित्रता है। हमें चरित्रवान, सच्चरित्रवान लोग अच्छे लगते हैं, हमें बद चलन वाले, गंदी दृष्टि वृत्ति वाले अच्छे नहीं लगते। क्योंकि मूल रूप से आत्मा सत्य है, शुद्ध है। हमें जीवन में शांति चाहिए या अशांति चाहिए? क्या चाहिए? हरेक को शांति चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली हम शांत हैं। कितना भी कोई गुस्सा करे, वापस शांत हो जाता है ना। 24 आवर्स कोई गुस्से में नहीं रह सकता। गुस्सा करके आखिर हम शांत हो जाते। शांति हमारा ओरिजिनल नेचर है, इसलिए हमें शांति चाहिए, न कि अशांति। हमें जीवन में सुख चाहिए, न कि दुख। जीवन भर इंसान मेहनत करता है, धन कमाता है, साधन सुविधाएं बनाता है, परंतु इन साधनों का, इन सुविधाओं का सुख भी तब अनुभव होता है जब मेरी आत्मस्थिति सुख की है। अगर मुझे सुख चैन नहीं है तो अपार वैभव महल में भी सुख नहीं लगता। हमें सब प्यार करे वो अच्छा लगता है, कोई हमारी घृणा नफरत करे वो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। परंतु जब से आत्म विस्मृत हुए, खुद को देह समझने लगे, बॉडी कॉन्शियस बने, आत्मा का शुद्ध स्नेह का नेचर वासना में, मोह अटैचमेंट में बदल गया। जब प्यार देह से हो जाता है तो बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, अटैचमेंट आता है। जब आत्मा का प्यार का नेचर धन साधन से अटैच हो जाता, लोभ बन जाता है, देह संबंध में फंस जाते, मोह हो जाता है, खुद के ही नाम रूप और विशेषताओं से अटैच हो जाते, हम अभिमानी बन जाते। ओरिजिनल नेचर प्यार है, पर रॉन्ग अटैच हो गया तो वो विकृत बन जाते। हमें सब खुशी आनंद में रहे वो अच्छा लगता है, न कि कोई उदास रहे, नाराज रहे, हताश रहे, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम उनको आनंद में लाने की कोशिश करते। हमें सदा ज्ञान पाने की जिज्ञासा रहती है, सीखने की वृत्ति रहती है। हम ज्ञान पाना चाहते हैं, अज्ञान मिटाना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हमें सब जानना, सीखना, समझना अच्छा लगता है। हम अपनी अज्ञानता मिटाते रहते हैं, ज्ञान पाने की कोशिश करते। हमें शक्तिशाली लोग अच्छे लगते हैं, कमजोर कायर अच्छे नहीं लगते। ये हैं आत्मा की ओरिजिनल 7 क्वालिटीज। आत्मा शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति का स्वरूप है। शरीर 5 तत्वों से बना है, आत्मा गुणों का सेंस स्वरूप है। हम 5 कर्मेंद्रियों द्वारा 5 तत्व को लेते हैं, तब बॉडी एनर्जाइज होती है, रिफ्रेश होती है। स्वच्छ हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी, हमें अच्छा लगता है। स्वच्छ शीतल जल पीते हैं, फिजिकली रिफ्रेश होते हैं। ऐसे आत्मा मन बुद्धि संस्कार के द्वारा ज्ञान और गुणों को धारण कर एम्पावर होती है। लास्ट बात, हम आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। हमारे लिए ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, ये वर्क प्लेस है। इस 5 तत्वों से बनी भौतिक दुनिया में आकर आत्मा 5 तत्व का बना शरीर धारण करती है। शरीर द्वारा कर्म करते हैं, कर्ता और भोक्ता मैं आत्मा हूँ। मैं ही सोचता हूँ, मैं ही वक्ता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं आत्मा ही भोक्ता हूँ। शरीर तो एक साधन है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है। पर कहां से आए हैं, कहां जाना है, वो हमें पता ही नहीं। इसलिए हमने अपने मन बुद्धि इस दुनिया में ही लगा दिए हैं, जबकि हम सर्व आत्माओं का असली घर इस दुनिया से दूर परम धाम है। स्क्रीन पर देखिए चित्र में सबसे नीचे आसमानी रंग से जो बताया है ये भौतिक संसार है। पृथ्वी आकाश जलवायु अग्नि से बनी ये दुनिया है। इन पांच तत्वों से पार प्रकृति का सबसे ऊपर छठवां अति सूक्ष्म अखंड लाल ज्योतिर्मय महतत्व है। उस ब्रह्म तत्व में हम अपने ओरिजिनल आत्म स्वरूप में रहते हैं। हम आत्मा चैतन्य शक्ति वहां रहते। ये तत्वों की दुनिया है। यहां आत्मा इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करती है। परम धाम में शरीर नहीं, प्रकृति नहीं, कर्म नहीं, हलचल नहीं, आवाज नहीं, वो शांति की दुनिया है। साइलेंस वर्ल्ड कहते। आत्मा अपनी मर्ज स्थिति में स्थित है। जब आत्मा इस दुनिया में आकर फिजिकल ऑर्गन्स लेती है वो कर्म में आती है, आवाज में आती है। ये टॉकी वर्ल्ड है। इस दुनिया में रहते हुए अगर ये सत्य हम याद रखें कि ये कर्म क्षेत्र है, ये मेरा घर नहीं है। इस दुनिया में रहते भी हम अनासक्त कर्म योगी बन सकते हैं। इस देह में रहते हर क्षण देह द्वारा कर्म करते अगर हम ये स्मृति रखें कि मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति हूं, तो कर्म करते भी सोल कॉन्शियस रह सकते हैं, देह अभिमान नहीं आएगा। जब आत्म विस्मृत होते हैं तब हम खुद को देह समझने लगते हैं, बॉडी कॉन्शियस बन गए। तो ये है राजयोग का पहला लेसन, स्वयं का सत्य परिचय जानना, समझना, उस अनुसार मानना और चलना। तो हम 5 मिनट आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित बैठ जाए। अपना डायरी, पेन, पर्स, फाइल, हैंडबैग, मोबाइल सब समेट कर साइड में रख दीजिए। हाथ में गोद में लेके न बैठ। एक दो से अलग अलग होकर बैठें, टच करके न बैठें। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से अपने असली घर परम धाम में जाएंगे। यही कारण है योग अभ्यास के समय गोल्डन रेड कलर प्रकाश किया जाता है ताकि हमें सहज जागृति रहे। हमारा असली घर इस दुनिया से दूर परम धाम है। हम मन बुद्धि से परम धाम जाएंगे अपने ओरिजिनल ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप में स्थित होंगे। आंखें नेचुरल खुली रहने दें। आंख बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें मन बुद्धि से चिंतन करना है, महसूस करना है। इसमें आंख बंद करने की कोई बात ही नहीं। आंख बंद करेंगे निंद्रा आ जाएगी। आंखें खुली रखिए। आज मैं आपको अभ्यास कराती हूँ। मेरे मस्तक में देखें, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं। ये नया अभ्यास है, इसलिए मैं गाइड करूँगी, विचार दूंगी कमेंट्री के रूप में। आपको मुख से रिपीट नहीं करना है। साइलेंस में बैठकर मन ही मन वो ही थॉट रिवाइज करें, दोहराएं, अर्थ समझें, रियलाइज करें, उस अनुभूति में स्थित होना है। ये है आत्मचिंतन, सेल्फ रियलाइजेशन का पहला अभ्यास। मैं एक आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मेरे लिए यह शरीर कर्म करने का साधन है। मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। कर्म फल भोगती हूँ। मैं इन आँखों द्वारा देखती हूँ। मुख द्वारा बोलती हूँ। कानों द्वारा सुनती हूँ। ये मेरे फिजिकल ऑर्गन्स हैं। सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर इस दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार परम धाम है। जहां अति सूक्ष्म अखंड लाल ज्योतिर्मय प्रकाश तत्व छाया हुआ है, जिससे ब्रह्म तत्व महतत्व कहते हैं। मैं आत्मा अपनी शांत ओरिजिनल शुद्ध स्थिति में स्थित हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, मन अंतर्मुखी शांत बनने लगता है। मैं स्व में केंद्रित होने लगती हूँ। मैं सत्य अविनाशी हूँ, शुद्ध पवित्र हूँ, शांत एकाग्र हूँ। मैं सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सात गुणों का स्वरूप हूँ। स्वचिंतन करते करते जैसे ही आत्मभिमानी बनती हूँ, मुझे स्व में ही सुख आनंद शक्ति की अनुभूति होती है। मैं आत्मा हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ। अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मैं शांत हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। शांति बाहर खोजनी नहीं है। मैं आत्मा ही शांत स्वरूप। सुख साधनों में नहीं है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। आनंद फिल्मों में नहीं है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप।